ఆత్మనే నమ. నమో అరిహంతాణం, నమో సిద్ధాణం, నమో ఆయర్యాణం, నమో ఉవర్జాయాణం, నమో లోయే సౌవసాహూణం. అవగయ అశుద్ధ భావే ఉవగయ కమ్మక్క ఉచ్చ ఉభావే పణమియ సౌవరహంతే భావణియోగం పరువేమో. యహ శ్రీ వీర్సేన్ ఆచార్య రచిత ధౌలా టీకా హై, జో షట్ఖండాగమ గ్రంథ పర్ లిఖీ హుయీ హై, జిస్కే కర్తా హై పుష్పదంత ఔర్ భూతబలి ఆచార్య, జిన్హోనే శ్రీ ధర్సేన్ ఆచార్య కే ఉపదేశ కే అనుసార్ ఇస్కే రచనా కీ హై, జో ఉపదేశ హమే మూల్ మే భగవాన్ మహావీర్ కే ద్వారా ప్రాప్త హువా హై. అబ్ యహాన్ పాంచవీ పుస్తక మే హమ్ భావానుగమ దేఖ రహే హై ఔర్ పృష్ఠ సంఖ్య అభీ 195 హై. 195 పాంచ భావం కి యహాన్ చర్చా చలేగీ అభీ. తో యహాన్ మిథ్యా దృష్టి మే కౌన్ సా భావ హోతా హై, యా మిథ్యా దృష్టి యా భావ కౌన్ సా హై, ఐసా ప్రశ్న పూచా తా. తో మిథ్యా దృష్టి యాని మిథ్యాత్వ యా ఔదయిక భావ హై, ఐసే వహాన్ పర్ కహా తా. ఉస్ పర్ శంకా కర్కే లంబీ చౌడీ శంకా చల్ రహీ హై. उसका ऐसा कहना है कि मिथ्या दृष्टि जो गुणस्थान है उसमें केवल औदयिक भाव ही नहीं होता, अन्य भी भाव पाए जाते हैं. अन्य कौन कौन से भाव होते हैं मालूम है? पारिणामिक है, शायोपशमिक है, हाँ तीन ही है. तो आप अकेला औदयिक भाव क्यों कहते हो, ऐसा उसका प्रश्न था. उसको आगे जवाब देंगे कि यह मिथ्यात्व या औदयिक भाव है उसकी चर्चा है, अन्य भाव नहीं है ऐसा नहीं कहा. फिर भी जो शंकाकार ने लंबी शंका पूछी है उसके लिए उसने गाथाएं भी उद्धृत की है. कल हमने देखा था इसमें 194 पृष्ठ पर हमने देखा था. ये गाथाई वाले हो तो पहले बोला था, गाथा पहले हमने पढ़ी थी. यहां जो हम पढ़ रहे हैं ना शंका 194 से, हम शंका फिर दोबारा पढ़ते. ये बीच में लिखा है देखो, मिथ्या दृष्टि के अन्य भी भाव होते हैं. क्योंकि ऊपर हमने सूत्र पढ़ा 2 का कि मिथ्या दृष्टि का कौन सा भाव है, औदयिक भाव है. उसके ऊपर शंकाकार की शंका है, मिथ्या दृष्टि के अन्य भी भाव होते हैं. उन ज्ञान दर्शन गति लिंग कषाय भव्यत्व अभव्यत्व आदि भावों के अभाव मानने पर संसारी जीव के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है. यानी उनके अन्य अगर भाव नहीं है ऐसा मानेंगे, उनके कोई गति औदयिक भाव नहीं है, कषाय औदयिक भाव नहीं है, औदयिक भाव तो है ना इतने सारे पाए जाते हैं मिथ्या दृष्टि को, तो यदि उनको ही नहीं मानेंगे तो संसार का ही अभाव हो जाएगा. और उसके लिए भी वो कहता है, कहा भी है करके, ये जो 13 और 14 की हमने गाथा कल पढ़ी थी इसको, कि कहां कहां कितने कितने भंग पाए जाते हैं. भंग यानी भेद, अलग अलग. तो हमने पढ़ा था मिच्छत थे दस भंग, उसका नीचे अर्थ किया है. मिथ्यात्व गुणस्थान में उक्त भावों संबंधी दस भंग होते हैं. वे कैसे होते हैं वो अभी विशेषार्थ में समझाएंगे. सासादन और मिश्र गुणस्थान में भी इसी प्रकार दस भंग जानना चाहिए. यानी तीन तो भाव है और फिर उसके कॉम्बिनेशन, उसको भंग कहते हैं. औदयिक है, क्षौपशमिक है और पारिणामिक है. तो तीनों को अलग अलग लेंगे तो ये तीन भंग हुए, उसको एक संयोगी कहेंगे. एक संयोगी भंग या प्रत्येक भंग कहेंगे. अब दो दो का कॉम्बिनेशन ले लेंगे कि औदयिक क्षौपशमिक, औदयिक पारिणामिक, क्षौपशमिक पारिणामिक, ये दो दो के कॉम्बिनेशन होंगे, वो तीन भंग और हो जाएंगे. और फिर तीन वाले भंग, तीनों एक साथ, वो एक भंग और हो जाएगा. और प्रत्येक का स्वसंयोगी भंग जिसको कहते हैं. अभी हमने जो देखे थे वो परसंयोगी भंग देखे. स्वसंयोगी ने औदयिक का औदयिक के साथ कॉम्बिनेशन, जैसे मिथ्या दृष्टि को अज्ञान भी है, औदयिक भाव में गति भी है, कषाय भी है, तो एक साथ बहुत सारे औदयिक भाव है तो उसको औदयिक औदयिक कॉम्बिनेशन कहेंगे. वैसे क्षौपशमिक, अज्ञान भी है, और उसके लब्धि भी है क्षौप श्रमिक लब्धि, तो उसको क्षौप श्रमिक श्रमिक कॉम्बिनेशन कहेंगे। पारिणामिक का पारिणामिक के साथ कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, जीवत्व भव्य तो होगा, किसी को जीवत्व अभव्य तो होगा, किसी को भव्यत्व अभव्य तो होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता। हाँ, तो जो पॉसिबल है इस तरह से वे तीन भंग और हो जाएंगे। इस तरह से स्वसंयोगी और परसंयोगी ऐसे मिलकर यह ध्वज भंग बताए। वो प्रत्येक गुणस्थान की संख्या अलग अलग बताएंगे, ये तो विशेषार्थ में अभी हम देखने जा रहे हैं।
एक भंग में हम लोग कषाय चारों ले सकते हैं कि एक ही?
एट अ टाइम एक कषाय है। उदय रूप अगर कषाय लेना है, एक समय की बात अगर करते हैं, तो कोई एक गति भाव है जैसे वैसे एक कषाय है, एक लेशा है, ये सब उसमें ले सकते हैं। सासादन और मिश्र गुण स्थान में भी इसी प्रकार दस भंग जानने। अभी हम उसकी टोटल देखते हैं, यहाँ फिर हर एक गुणस्थान पर घटित करेंगे। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में वे ही भंग त्रिगुणित और चतुरहीन तीन गुणा, यानी दस को तीन गुणा करना और उसमें से चार माइनस करना, यानी वहाँ 26 भंग है। देखो ये गाथा है तो उसमें थोड़े शब्दों में अधिक संख्या बतानी है, तो 36 ऐसा लिखने के बदले पहले तीन में 10-10 होते हैं और चौथे में तीन गुणा और चार कम, ये गाथा में लिखने का तरीका है। ये 10 को तीन गुना क्यों कहे सर? उनको तो डिराइव क्या करना है, 26 संख्या निकालनी है। 10 मिथ्यात्व वाले को 10 भंग है, सासादन वाले को 10 है, मिश्र वाले को 10 भंग है, चौथे वाले को कितने भंग होते हैं? तो मुझे कहो चौथे में भाव कौन कौन से पाए जाते हैं? कौन कौन से होते हैं? शायिक हो सकता है, पांचों हो सकते हैं। जरा हम देखते हैं ना, चौथे वाले को पांचों भाव होंगे, कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक कहेंगे, क्षायोपशमिक कहेंगे, औदयिक और पारिणामिक। एक एक जीव को भी, हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा, पर एट अ टाइम कितने हो गए वो हम देखेंगे। नाना जीवों की अपेक्षा पांचों भाव होते हैं चौथे वाले को, परंतु एक साथ पांच हो गए कि नहीं हो गए? किसी को जिसको औपशमिक है उसको क्षायिक नहीं होगा, क्योंकि औपशमिक और क्षायिक सम्यक तो होगा इसमें, यहाँ तो चारित्र की बात नहीं है। यानी जिस जीव को क्षायिक है उसको, यानी औपशमिक क्षायिक वाला कॉम्बिनेशन नहीं घटित होगा। तो पांचों अलग अलग लेंगे तो पांच तो उसके भंग हो गए। अब किसी चीज में भंग निकालने का तरीका जो हमने कल यहाँ देखा था, विशेषार्थ जो चौथे भाग में पढ़ने को बोला था, पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा? आपने पढ़ा? अरविंद भाई, मुझे पक्का ये मालूम था अरविंद भाई पढ़ के आने वाले हैं। विनोद भाई ने भी पढ़ा, अच्छी बात है। देखिए पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। हाँ बोलो, क्या लिखा है उसमें? ने देखो एक भंग, एक संयोगी भंग। अभी हम जैसे हमने देखा ना ए बी और सी, अभी हम तीन ही लेते हैं। अब इनके एक संयोगी भंग है ना, प्रत्येक भंग जिसको कहते हैं, ए को लेना, बी को लेना, सी को लेना, तो तीन होते हैं। द्विसंयोगी ने ए बी, ए सी और बी सी, वो तीन हो गए। तो ये निकालने का कितने होते? अभी तीन है तो हम तो यानी विचार करके भी बता सकते। मान लेते 6-7 हो गए या 10 ऐसे हो, ए बी सी डी ऐसे हम ले लेंगे, तो उसके भंग लाना बहुत मुश्किल बात है। तो ये तीन है, तो ये यहाँ तीन लिखना, फिर दो लिखना, फिर एक लिखना, और नीचे एक दो और तीन लिखना। अब ये जो एक है वो कहता है वो प्रत्येक भंग, यानी एक संयोगी भंग हम कहेंगे। कितने होते हैं? तो तीन को एक से डिवाइड करना तो तीन होंगे, ठीक है ना? ए बी और सी, ये तीन हो गए। अब हमको द्विसंयोगी भंग चाहिए, तो नीचे हमको दो आना चाहिए, तो ऊपर के पहले दो फिगर लेना, तीन गुना दो 6 हो जाएगी, और उसको दो से डिवाइड करना, तो वे भी तीन आ जाएंगे। अब तीन संयोगी भंग, तो तीन गुना दो गुना एक और नीचे एक गुना दो गुना तीन, ये सब इसके यहाँ इस वन इंटू टू। हाँ, एक तो हमेशा अभी आगे तीन में। हाँ देखो, तीन जब लेंगे, तीन संयोगी, वन इंटू टू इंटू थ्री नीचे, और इसको इस चीज से डिवाइड करना है ऊपर वाले फिगर को, तो एक आ जाएगा। तो तीन संयोगी एक ही होते। हाँ देखो, अभी हम तीन का तो हमने उदाहरण लिया, अभी हम पांच की बात करेंगे। पांच भाव है, तो पांच चार तीन दो और एक ऊपर लिखना अंश में, और छेद में क्या लिखना है, एक दो तीन चार पांच, उल्टे क्रम से लिखना। अब ये जो नीचे एक है, तो एक सिंगल संयोगी जिसको हम प्रत्येक भंग कहते हैं, या एक संयोगी कहो ना इसके लिए, एक में संयोग नहीं होता है फिर भी कहने के लिए हम वो एक वाला भंग लिखेंगे। तो वो कितने हैं, तो ऊपर उसकी क्या फिगर है, पांच। तो पांच को एक से भाग देंगे तो पांच ही आते हैं। तो पांच चीजों में वो सिंगल वाला प्रत्येक भंग कितने हो गए, पांच हो गए। जैसे ए बी सी डी ई ऐसा लिखे हमने, या अभी भावों की बात में औपशमिक औदयिक औपशमिक शायिक पारिणामिक, तो उसको अकेले अकेले लेंगे तो ये पांच भंग तो ये हो जाएंगे। और फिर द्विसंयोगी भंग निकालना है, तो नीचे से ये दूसरा नंबर है ना, तो ऊपर के भी दो फिगर लेना और नीचे के भी दो फिगर लेना, पहले आपस में गुणा करना। पांच गुना चार बीस होते हैं, एक गुना दो दो होते हैं, तो बीस को दो से डिवाइड किया दस आ जाएंगे, ये दस भंग हो जाएंगे, द्विसंयोगी भंग दस हो जाएंगे। अभी तो पहले इतना सीखो, फिर बाद में चौथे वाले को ये द्विसंयोगी भंग दस होगे कि नहीं होगे उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले तो कितने भंग होते हैं उसकी बात करेंगे। अब तीन संयोगी भंग कितने होते हैं, पांच गुना चार गुना तीन डिवाइडेड बाय एक गुना दो गुना तीन, पांच गुना चार पांच चौक बीस त्रिक साठ, ये तीन को तीन गया, दो से चार को डिवाइड किया यहाँ दो आ गए, पांच दूनी दस। अभी चतुस्संयोगी भंग कितने हैं, तो नीचे एक दो तीन चार लेना आपस में गुणा करना, और ऊपर पांच चार तीन दो आपस में गुणा करना, दो के दो सात, तीन के तीन सात, चार के चार के साथ कैंसिल होगा, पांच डिवाइडेड बाय एक रहेगा, पांच भंग हो जाएगी। और पांच संयोगी भंग कितने होते हैं, तो एक ही होगा, वैसे भी यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबका मिलकर एक ही भंग हो सकेगा, वहाँ एक ही कॉम्बिनेशन। यस, सभी चीजें ऊपर लिखो सभी नीचे लिखो, वही ऑर्डर है, तो सबके एक में के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक रह जाएगा। ये भंग निकालने का तरीका है। अब हम
इंटरनल निकालना है, माने पांच के अंदर पांच का।
हाँ, यानी वो तो होएगी ही होगे, अभी हर एक का अपने अपने साथ, जैसे एक एक में बहुत सारे ग्रुप है, जैसे औदयिक भाव बहुत सारे है, तो एक जीव के एक साथ बहुत सारे औदयिक भाव, यानी औदयिक गति औदयिक भी है, कषाय भी है, लेशा भी है, अन्य अन्य वेद भी है, तो उसके लिए कहेंगे औदयिक औदयिक एक नहीं, उसमें ज्यादा नहीं लेना, उसमें एक ही लेना भंग, उसमें और कॉम्बिनेशन नहीं करने, खाली औदयिक औदयिक कहेंगे, क्षौपशमिक क्षौपशमिक कहेंगे, पारिणामिक पारिणामिक कहेंगे, उसमें और भेद करेंगे तो कर सकते हैं, परंतु अभी तो हम उतना नहीं करेंगे। तो अभी हम चौथे वाले की बात निकालेंगे, पुस्तक में तो बाद में पढ़ेंगे। तो हम कौन कौन से लेते हैं, औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक, ये औपशमिक लिया है ना, ये औदयिक और पारिणामिक। अब हमको कॉम्बिनेशन करने हैं, एक एक को लेंगे तो पांच भाव तो ये हो जाएंगे। मैं यहाँ अंग्रेजी में लिखती हूँ, ये अभी अपने कितने भंग है उसके हम टोटल करेंगे। अब द्विसंयोगी लेना है, तो द्विसंयोगी आम तौर पर कितने भंग निकलते हैं, पाँच गुना चार डिवाइडेड बाई वन इंटू टू दस होते हैं, तो क्या यहाँ दस के दस हो जाएंगे? औपशमिक का क्षौपशमिक के साथ होगा कि नहीं होगा भंग? औपशमिक सम्यक तो और क्षौपशमिक सम्यक तो क्या एक साथ होगा? चौथे की बात चल रही है, ख्याल है ना? हाँ, एक शायो लिखा है वो क्षौपशमिक, परंतु ये औपशमिक का क्षौपशमिक के साथ, औदयिक के साथ, पारिणामिक के साथ, अन्य के साथ कॉम्बिनेशन दो दो का हो सकता है, परंतु इन दोनों का आपस में नहीं होगा। बाकी इनका अलग अलग जो दो दो का जो कॉम्बिनेशन है वो सर्वत्र हो सकेगा, इसलिए एक भंग वहां कम करना, दस के बदले वहां नौ लेना। अब तीन संयोगी भंग हमने कितने देखे थे? पांच गुना चार गुना तीन और नीचे एक गुना दो गुना तीन, वो भी दस है। तो अभी यहां भी जहां जहां ये दो एक साथ लेंगे वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, पहले तीन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी औपशमिक शायिक क्षौपशमिक कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, औपशमिक शायिक औदयिक कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, और औपशमिक शायिक पारिणामिक कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, इनके अलावा वाले कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यानी औपशमिक क्षौपशमिक औदयिक होगा, औपशमिक क्षौपशमिक पारिणामिक होगा, फिर क्षौपशमिक औदयिक पारिणामिक होगा, इस तरह से जो अन्य बचे हुए वो हो सकते हैं।
ये तो हमें मालूम है कि पांच भाव के हिसाब से ये ऐसा शायद का चार एक साथ नहीं होंगे, और भी ऐसे ये भंग और क्या करना ये इसके साथ होगा क्या नहीं होगा
वो तो हमें देखना पड़ेगा। अभी औपशमिक और क्षौपशमिक कौन से गुणस्थान में हो सकता है वो तो हमारी जिम्मेदारी है। अब ग्यारहवें गुणस्थान में तो औपशमिक और क्षायिक एक साथ भी हो गए भंग, क्योंकि औपशमिक तो सम्यक तो है और क्षायिक तो सम्यक तो है और औपशमिक तो चारित्र है, तो वहां कॉम्बिनेशन हो सकेगा। परंतु यहाँ पर औपशमिक भाव तो सम्यक तो की अपेक्षा कहा था, और किसी अन्य जीव को क्षायिक भाव भी सम्यक तो की अपेक्षा कहा था, परंतु एक साथ एक जीव को एट अ टाइम क्षायिक सम्यक तो और औपशमिक सम्यक तो नहीं हो सकता, इसलिए वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ऐसे हर एक गुणस्थान में हम अभी निराय करेंगे, विशेषार्थ में देखेंगे इसको। देखो, मिथ्या तो गुणस्थान में उक्त भाव संबंधी दश भंग होते हैं, यह भी हमने पढ़ा था। सांसाधन मिश्र गुणस्थान में भी इसी प्रकार दश भंग जानना। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में वे ही भंग त्रिगुणित और चतुर्हीन यानी 26 होते हैं। इस प्रकार ये 26 भंग क्षौपशमिक देशविरत यानी क्षौपशमिक विदेशविरत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में भी होता है। एक क्षौपशमिक देशविरत यानी क्या? हाँ, वेदक सम्यक्त्व वाले देशविरत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में भी होते हैं। क्षपक श्रेणी वाले चारों क्षपकों के 19 भंग होते हैं, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, वो इसका जो विशेष अर्थ है वो अभी पढ़ने जा रहे हैं। उपशम श्रेणी वाले चारों उपशामकों में पृथक 35 भंग भाव की अपेक्षा होते हैं। अब इन सब जो अभी हमने जो पढ़ा है 13 और 14 गाथा, 14वीं गाथा, उसका अर्थ अभी कहने जा रहे हैं। विशेष अर्थ पूर्व में बतलाए गए भंगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। औदयिक आदि पांचों मूल भावों में से मिथ्या तो गुणस्थान में औदयिक क्षौपशमिक और पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं। अभी हमने देखा था उनके तो ना ही औपशमिक भाव है और ना ही क्षायिक भाव है मिथ्यात्व गुणस्थान। अतः असंयोगी या प्रत्येक संयोगी की अपेक्षा ये तीन भंग हुए, उसको प्रत्येक भंग कहो या असंयोगी भंग कहो, क्योंकि एक एक को लिया ना एक टाइम। जैसे हमने ए बी सी में एक एल को बी को और सी को सिंगल लेना, इनके द्विसंयोगी भंग भी तीन होते हैं। कौन से? औदयिक क्षौपशमिक, औदयिक पारिणामिक और क्षौपशमिक पारिणामिक। तीन के कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं। तीनों भावों का संयोग रूप त्रिसंयोगी भंग एक ही होता है, तीनों को एक साथ लिया औदयिक क्षौपशमिक पारिणामिक। इन सात भंगों के सिवाय स्वसंयोगी तीन भंग और होते हैं, औदयिक औदयिक पारिणामिक पारिणामिक और क्षौपशमिक क्षौपशमिक। पारिणामिक पारिणामिक कौन सा होगा? हाँ, भव्यत्व जीवत्व या अभव्यत्व जीवत्व, अलग अलग जीवों की अपेक्षा। जैसे औदयिक औदयिक, सावश्रमिक सावश्रमिक और पारिणामिक पारिणामिक, इस सब प्रकार ये सब मिलाकर तीन तीन यानी असंयोगी तीन, द्विसंयोगी तीन, त्रिसंयोगी एक और स्वसंयोगी तीन अपने अपने के साथ, इस तरह से कुल मिलाकर 10 भंग हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान में, मिथ्या तो गुणस्थान में 10 भंग होते हैं। यही 10 भंग सासादन और मिश्र गुणस्थान में भी जानना चाहिए। सासादन और मिश्र में भी कौन कौन से भाव है? हाँ, औदयिक है, सावश्रमिक है और पारिणामिक है। वहाँ भी औपशमिक भाव नहीं है और क्षायिक भाव नहीं है, बराबर। तो वहाँ भी ये 10 भंग हो जाएंगे। अब अविरत सम्यक्त्व में हम देख रहे हैं, जो हमने अभी थोड़ा देखा भी था यहाँ पर, फिर देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में पांचों मूल भाव होते हैं, इसलिए यहाँ प्रत्येक संयोगी 5 भंग होते हैं। प्रत्येक भंग कहो या असंयोगी भंग कहो या प्रत्येक संयोगी कहो, ये 5 हो गए। पांचों भावों के द्विसंयोगी भंग 10 होते हैं, यानी ऐसे किसी 5 भावों के द्विसंयोगी गिनेंगे तो हमने देखा था ना, 5 × 4 / 1 × 2 तो 10 संख्या आती है। परंतु यहाँ औपशमिक और क्षय के कॉम्बिनेशन एट ए टाइम नहीं होगा, एक जीव को एक साथ। देखो द्विसंयोगी भंग 10 होते, किंतु उनमें से इस गुणस्थान में औपशमिक और क्षायिक भाव का संयोगी भंग संभव नहीं है, क्योंकि वह उपशम श्रेणी में ही संभव है। अभी हमने देखा था उपशम श्रेणी में क्षायिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ तो दोनों ही सम्यक्त्व की अपेक्षा है, औपशमिक और क्षायिक भाव है, वो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते एक जीव के। अतः 10 में से एक घटा देने पर द्विसंयोगी भंग 9 ही पाए जाते हैं। अभी हमने निकाला ना 9, अब 3 संयोगी देखते हैं। 5 भावों के त्रिसंयोगी भंग 10 होते हैं, 5 × 4 × 3 और उसको भाग देना 1 × 2 × 3 से, इसका भी उत्तर 10 आता है। तो 3 संयोगी भंग भी 10 होने चाहिए थे। वहां पर ये लगाना, जिस 3 चीजों में औपशमिक और क्षायिक एक साथ वाला जो भंग है वो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, औपशमिक क्षायिक एक साथ नहीं होगा, तो उसको उसमें से 10 में से बाद करना पड़ेगा। तो हम पढ़ते देखो, 5 भावों के त्रिसंयोगी भंग 10 होते, किंतु उनमें से यहाँ पर क्षायिक औपशमिक औदयिक, क्षायिक औपशमिक पारिणामिक और क्षायिक औपशमिक सावश्रमिक, ये 3 भंग संभव नहीं है। देखो यहाँ पर हमने लिखे सब भाव, औपशमिक और क्षायिक ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये 2 और सावश्रमिक ऐसा भी भंग नहीं होगा, ये 2 और औदयिक वाला भी भंग नहीं होगा, ये 2 और पारिणामिक वाला भी भंग नहीं होगा। बाकी अलग अलग इसको छुट्टा कर दो, औपशमिक का अन्य के साथ होगा भंग, तो 10 में से ये 3 निकाल देना तो 7 भंग इसके होंगे, 5 + 9 + 7। अभी चतुस्संयोगी भंग निकालेंगे, साथ ही पांचों भावों के चतुस्संयोगी भंग 5 भंग होते। देखो चतुस्संयोगी, ये नीचे 4 तक गिना और ऊपर 2 तक आपस में गुणा करना, 2 के साथ 2 गए, 3 के साथ 3 गए, 4 के साथ 4 गए, 5 रह गए, तो चतुस्संयोगी भंग भी 5 हो जाएंगे। अब यहाँ कितने हो गए देखो, उनमें से जहाँ जहाँ क्षायिक और औपशमिक के साथ 4 वाला भंग है कॉम्बिनेशन होगा उसको नहीं लेना है। यहाँ पर औदयिक सावश्रमिक, यहाँ एक शब्द रह गया, क्षायिक चाहिए, क्षायिक और पारिणामिक कौन से भंग होते हैं उसको बता रहे यहाँ। देखो तथा औदयिक सावश्रमिक औपशमिक पारिणामिक, ये 2 ही भंग संभव है, शेष 3 नहीं। ये कौन से नहीं उसको देखते, देखो यहाँ 4 संयोगी भंग, औपशमिक क्षायिक शैवशमिक और औदयिक, ये वाला भंग नहीं होगा। औपशमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक, ये भंग भी नहीं होगा। अभी कौन से रह गए? ये चार, ये नहीं होगे। हाँ,
औपशमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक, वो एक भंग हो गया। और क्षायिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक,
औदयिक पारिणामिक, औदयिक क्षायिक और क्षायिक पारिणामिक, ऐसा। देखो, औपशमिक, क्षायिक, पहले ये चारों को एक साथ लेना, वो भी नहीं होगा। फिर ये दो और आखिर के दो, ये भी नहीं होगा। और फिर ये तीन और आखिर का एक, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तीन नहीं होगे, दो होगे, दो ही होगे। चार संयोगी पांच होगे, दो होगे, तीन नहीं होगे। देखो, तीन कौन से नहीं होगे? औपशमिक, क्षायिक, औदयिक और शैवशमिक, यानी पहले चार नहीं होगे। क्रम से हम देखते, फिर औपशमिक, क्षायिक, शैवशमिक और पारिणामिक, वो भी नहीं होगा। अब इसको छोड़ना, औपशमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक, ये भी नहीं होगा। तो कौन से होगे? तो इनको अकेला अलग अलग लेना। ये चार का कॉम्बिनेशन हो सकता है या ये चार का। एक बार औपशमिक को निकाल देना, रिमेनिंग चार लेना। एक बार क्षायिक को निकालो और रिमेनिंग चार ले लो। ये हो सकते हैं, यानी चतुस्संयोगी दो ही भंग हो सकते हैं। यहाँ क्षायिक लिखा नहीं है, वो लिखना चाहिए। फिर से देखो, मैं अभी यहाँ पढ़ती हूँ। उनमें से यहाँ पर औदयिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक बीच में डालो और पारिणामिक कौन से है वो बता रहे। तथा औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और पारिणामिक, जहाँ औपशमिक है ना, वहाँ क्षायिक लिखना। ऐसे ये चार का कॉम्बिनेशन होगा। दूसरे में तो चारों बातें बताए, चार का संयोग है। चार संयोगी वाले दो भंग होते हैं, उसमें से पहले भंग में उन्होंने तीन ही नाम लिखे, वहाँ एक नाम क्षायिक वाला ऐड करो। दूसरे भंग में तो चार नाम उन्होंने लिखे ही है, वो है वैसे लिखो, है वही करना है। दूसरे लाइन में कुछ बदला नहीं करना है। क्षायिक लिख दें पहले लाइन में, हाँ, दूसरे लाइन में कुछ नहीं करना है। शेष तीन नहीं, ये ख्याल में आया? तभी यहाँ हम चतुस्संयोगी दो लिखे, तीन नहीं ना, दो है। अभी पांच संयोगी भंग कितने लिखने? एक भी नहीं। यदि औपशमिक वगैरह का कुछ घोटाला नहीं होता तो आम तौर पर पांच संयोगी एक भंग होता है, परंतु यहाँ हम उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको पांचों को एक साथ लेते हैं तो औपशमिक, क्षायिक दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। तभी ये कितने हो गए? 9, 5, 14, 7, 21, 22, 23। 23 जो है, अभी उसमें स्व संयोगी भंग लिखना है। बराबर, हाँ। तभी औपशमिक, वो आठ में आपस में और भेद नहीं करना, बस औदयिक के साथ एक दूसरा औदयिक भाव है, इतना ही लेना। गति के साथ कषाय, गति के साथ वेद, गति के साथ वो नहीं लगाना है अभी। औदयिक की बात अभी इसमें सुनो। फिर अभी हमको स्व संयोगी भंग लगाना है। अशोक भाई ने तो उत्तर भी दे दिया। औपशमिक में औपशमिक का औपशमिक के साथ होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यह एक ही औपशमिक भाव है, तो तो उसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए दूसरा उपशमिक भाव ही नहीं है यहाँ, इसलिए स्व संयोगी भंग नहीं होता है। क्या क्षायिक के साथ दूसरा क्षायिक भाव कोई है यहाँ की जिसका भंग हो सके? चौथे में नहीं है, एक ही क्षायिक भाव है। मंजू बेन ख्याल आता है? तो स्व संयोगी भंग इन दोनों में नहीं घटित हो गए। क्षायोपशमिक भाव की बहुत सारे है ना, ज्ञान भी है, लब्धि भी है, दर्शन भी है, तो उसका आपस में स्व संयोगी भंग बनेगा। तो इसका स्व संयोगी एक औदयिक वाले भी ज्यादा है ना एक से, तो उसका एक स्व संयोगी, और पारिणामिक में कितने लेना, कौन सा लेना? हाँ, और या हाँ अभवत्व वाले, ये चौथा गुणस्थान चल रहा है। अभव्यत को यहाँ नहीं लेना, बहुव्यत्व पारिणामिक और जीवत्व पारिणामिक, ये इसका भंग है। ज्यादा भी होते तो भी हमको तो एक ही भंग, यानी पारिणामिक पारिणामिक के साथ भंग लेना है। उसमें अगर और भेद करने तो मिथ्यात्व अवस्था में दो हो जाएगी, पारिणामिक का जीवत्व और भव्यत्व, जीवत्व और अभव्यत्व। दूसरे गुणस्थान के बाद तो ये भव्यत्व ही है एक पारिणामिक, वहां भव्यत्व के साथ जीवत्व है। तो उसके ये तीन भंग और हो जाएंगे स्व संयोगी। 23 में तीन मिला दिए, कितने हो गए? 26। अभी हम उतने ही पढ़े थे ना पहले, अब यहाँ पढ़ते देखो, शेष तीन नहीं है, इसके आगे पढ़ेंगे। इसका कारण यह है कि यहाँ पर क्षायिक और औपशमिक भाव साथ साथ नहीं पाए जाते, इसी कारण पंच संयोगी भंग का भी यहाँ अभाव है। बात है ना, अभी हमने देखा ना, पंच संयोगी भंग नहीं हो सकता। इनके अतिरिक्त स्व संयोगी भंगों में से, ये तो परसंयोगी की बात हो गई, अब स्व संयोगी ने अपने अपने वाले के साथ क्षावशमिक क्षावशमिक, औदयिक औदयिक और पारिणामिक पारिणामिक, ये तीन भंग और भी होते हैं। औपशमिक और क्षायिक के स्व संयोगी भंग यहाँ संभव नहीं है, तो मुझे कहना औपशमिक के स्व संयोगी भंग कहाँ संभव है? उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी में नहीं। क्या कहते आप? द्वितीय औपशमिक का औपशमिक के तो उल्टा हो जाए, वो क्षायिक औपशमिक का कॉम्बिनेशन है। मैं औपशमिक औपशमिक का पूछ रही हूँ, औपशमिक सम्यक्त के साथ औपशमिक चारित्र होगा तो वो भी कैसा आएगा? देखिए, क्षायिक के साथ औपशमिक का नहीं लगाना है, औपशमिक के साथ औपशमिक लगाना है। वो क्षायिक सम्यक्त के साथ चढ़ेगा, द्वितीय औपशम के साथ, द्वितीय औपशम सम्यक्त हुआ और औपशमिक चारित्र हुआ, या औपशमिक का औपशमिक के साथ जो भंग है वो उपशम श्रेणी में होगा, अन्यत्र नहीं होगा। बराबर, यहाँ तो उपशम श्रेणी में पूरे में ही गिना है, नहीं वो अलग अलग अपेक्षा आती है। जैसे आठवें नौवें दसवें में क्षावशमिक चारित्र कहा जाता है, परंतु यहाँ उपशम भाव उपशम श्रेणी में भी लगाया है यहाँ पर। अभी जहाँ जिस अपेक्षा से बात हो वहाँ वैसे ही ले लेंगे हम, क्योंकि उपशमना का कार्य चालू होते ना, कितनी प्रकृतियाँ उपशमित करते करते आगे बढ़ता है, इसलिए वहाँ पर भी उपशम भाव लेते हैं चारित्र का। पूर्ण रूप से वहाँ हो जाता है, परंतु वो उपशम चालू हो जाता है पहले से। वैसे तो आठवें में किसी प्रकृति का उपशम नहीं किया है चारित्र मोने की, फिर भी वो उपशम श्रेणी में पूरे ही उपशम भाव चारित्र का कहने में आता है। अब क्षायिक का क्षायिक के साथ कॉम्बिनेशन कब होगा? क्षपक श्रेणी में, क्षपक श्रेणी में क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। अब तेरहवें में तो हो जाएगा, ज्ञान भी क्षायिक है, दर्शन भी क्षायिक है, लब्धि भी क्षायिक है। दो क्षायिक भाव है क्या वहां पर? क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ता है तो दो क्षायिक भाव नहीं है, एक क्षायिक और एक उपशम भाव है। हमारे स्व संयोगी भंग की बात चल रही है, बराबर। तो यहाँ कहते स्व संयोगी भंग यहाँ संभव नहीं है। इस प्रकार अब ये चौथे की बात बता रहे हैं, प्रत्येक संयोगी 5, द्विसंयोगी 9, अभी हमने लिखा था ना ये स्लेट पर, त्रिसंयोगी 7, चतुस्संयोगी 2 और स्वसंयोगी 3, ये सब मिलाकर 5 अधिक 9 अधिक 7 अधिक 2 अधिक 3 26, असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में 26 भंग हो जाते हैं। यही 26 भंग देशविरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में भी होते हैं। नहीं, शव श्रमिक एक शायब श्रमिक दशव्रत क्यों लिखा, वो तो चारित्र की अपेक्षा क्षव संभाव है, क्योंकि उनमें 26 अंश घटाने हैं, तो वहाँ शायिक और औपश्रमिक सम्यक्त की भी बात करनी पड़ेगी वहाँ पर, उसके अलावा वो नहीं घटित होगा। एक शायब श्रमिक लिखा है कि देशव्रत इटसेल्फ शायब श्रमिक भाव है। शायब श्रमिक वहाँ क्यों लिखा पता नहीं है, देशे देशे खो समीय शौभ श्रमिक है ना, विरदे खवगान उन भी समतु ओ सामगे सुपुद पुद, वे भी क्षव श्रमिक भाव है ना, देश विरत और प्रमत संयत अप्रमत संयत, चारित्र की अपेक्षा क्षव श्रमिक भाव है, इसलिए वहाँ वैसा ले लिया होगा। और उपशम श्रेणी में औपश्रमिक चारित्र है और क्षपक श्रेणी में क्षायिक चारित्र है, इसलिए उसको क्षव श्रमिक कहा, देशविरत, प्रमत्त और अप्रमत्त को। देखो क्षव श्रमिक भाव में 18 देखे थे, उसमें वो ज्ञान के अज्ञान के दर्शन के लब्धि के वगैरह तो देखे थे, उसमें देश संयत वाला भी देखा था और सराग चारित्र वाला भी एक देखा था जिसको क्षव श्रमिक चारित्र कहते हैं, तो वो क्षव श्रमिक भाव यहाँ लगाया उन्होंने। परंतु सम्यक तो की अपेक्षा यहाँ औपश्रमिक सम्यक पे या क्षायिक सम्यक पे भी हो सकेगा, तभी तो 5 भाव घटेंगे और तभी तो ये कॉम्बिनेशंस घटेंगे। यदि हम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व लेते हैं अकेला, जिस जीव को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है उसमें तो 5 भाव नहीं घटित हो गए, तीन हो गए ना, या औपशमिक ना, एक जीव की अपेक्षा में बात कर रही हूँ। इसलिए वो जो क्षायोपशमिक देश संयम कहा, वो तो क्षोपशम देश संयम इटसेल्फ क्षोपशम भाव है, प्रमत्त अप्रमत्त विरत ये जो क्षोपशम भाव है चारित्र की अपेक्षा, उपशम श्रेणी में उपशम चारित्र है और क्षपक श्रेणी में क्षायिक चारित्र है, इसलिए वहाँ क्षोपशम शब्द डाला उन्होंने। यानी वहाँ जो 5 भाव घटित हो गए वो सम्यक्त्व की अपेक्षा औपश्रमिक सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा 5 भाव घटित हो गए, तो ये चौथे पांचवे छठे सातवे में 26-26 भंग हो गए। अब क्षपक श्रेणी संबंधी बता रहे, मिला ना नीचे से आठवीं लाइन है, क्षपक श्रेणी संबंधी चारों गुण स्थानों में वहां कौन सा भाव नहीं होगा, औपश्रमिक भाव नहीं होगा, क्षायिक तो है ही है ना, और फिर औदयिक है कि नहीं, और क्षायोपश्रमिक हाँ, कौन सा एक क्षायोपश्रमिक, ज्ञान है, दर्शन है, लब्धि है, हाँ, तो औपश्रमिक भाव के बिना शेष 4 भाव ही होते हैं। अभी 4 के कॉम्बिनेशंस वहां करने पड़ेंगे, औपश्रमिक भाव नहीं होता है तो क्षपक श्रेणी में कैसे, 4, 3, 2, 1 और नीचे 1, 2, 3, 4, प्रत्येक भंग कितने हो गए, 4 हो गए, प्लस द्विसंयोगी 6, अभी हाँ द्विसंयोगी है ना, दो का कॉम्बिनेशन, अभी यहाँ ऐसा कोई भाव नहीं कि जो आपस में टकरावे, इसके साथ हो सकता है नहीं, क्यों तो देखो प्रत्येक संयोगी भंग चार, द्विसंयोगी भंग छः, छः कैसे निकाला ख्याल है, चार गुना तीन और उसको भाग देना है एक गुना दो से। त्रिसंयोगी भंग चार, ये दो दो चले गए, ये चार रह गए, ये कितना दिए हमने छः देखे थे, त्रिसंयोगी चार और चतुस्संयोगी एक, देखो हाँ स्वसंयोगी भी देखेंगे, त्रिसंयोगी भंग चार चतुस्संयोगी भंग एक, तथा चारों भावों के स्वसंयोगी चार भंग और भी होते हैं। तो क्षायिक का स्वसंयोगी कौन सा होगा बोल, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्व, क्ष औपशमिक में ज्ञान है दर्शन है लब्धि है, औदयिक में हाँ बहुत सारे हाँ गति है लेश है हाँ, अभी पारिणामिक में जीवत्व भव्यत्व, यानी प्रत्येक का अपना अपना स्वसंयोगी भंग भी होगा। तो ये चार और बढ़ गए, चार चार आठ एक नौ सा नौ दह उन्नीस, हर एक का अपना अपना, क्षायिक का क्षायिक के साथ, क्षौपशमिक का क्षौपशमिक के साथ, औदयिक का औदयिक के साथ, पारिणामिक का पारिणामिक के साथ, जहाँ एक से ज्यादा है वहाँ संयोगी भंग होगी। जैसे हमने जहाँ क्षायिक सम्यक तो है चौथे गुणस्थान में, परंतु क्षायिक अन्य कोई भाव नहीं है, तो वहाँ तो स्वसंयोगी भंग नहीं हुआ था चौथे वाले में, अब यहाँ तो श्रेणी चल रहा है, क्षायिक तो सम्यक तो है और क्षायिक चारित्र भी है उसका, इसलिए यहाँ वो भंग हो सकता है। इस प्रकार सब मिलाकर 19 भंग क्षपक श्रेणी के प्रत्येक गुणस्थान में होते, प्रत्येक गुणस्थान लगाया, एक क्षायिक भाव आठवें में भी लगाया क्षायिक चारित्र, यहाँ पर आठवें में कितने प्रकृतियों का क्षय होता है हाँ? याद नहीं, आठवें में कितने प्रकृतियों का क्षय होता है, एक भी नहीं, ये सारा क्षय का कार्य नौवे गुणस्थान में होता है, वेदों का क्षय होता है एक एक से, फिर वो नौ नौ कषाय बाकी छह कषाय और पुरुष वेद, फिर क्रोध का मान का माया का वो सब, और वो भी पहले वाले जो अनंतानुबंधी को तो पहले क्षय करके आया है, अनंतानुबंधी और दर्शन मोह का क्षय करके चढ़ा है क्षपक श्रेणी, बाकी जो है ना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वगैरह वो आठ, उसका क्षय तो भी पहले पहले, वो सोलह प्रकृति अन्य जो है नाम कर्म की तेरह है, अस्थान वृद्धि वगैरह दर्शनावरण की तीन है, वो सोलह का क्षय करता है, फिर आठ ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का आठ का क्षय करता है, फिर आगे वो चलकर एक 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 का क्षय करता जाता है, एक एक वेद का, फिर क्रोध का मान का वगैरह। तो ये सारा जो 36 प्रकृतियों का क्षय वगैरह जो बात है वो तो नौवे में ही है, फिर भी यहाँ आठवें से वो क्षपक श्रेणी चालू हो गई ना, तो वहाँ कहेंगे कहेंगे, फिर भी हमें समझना चाहिए कौन से प्रकृति का कहाँ क्षय होता है। हाँ क्षपक श्रेणी में भी औदयिक भाव है वहाँ, जहाँ जो कुछ उदय योग्य प्रकृतियाँ बची है वहाँ उसका उदयिक, अभी औदयिक लास्ट तक भी है ना, चौदहवे वाले को होगा कि नहीं औदयिक औदयिक कॉम्बिनेशन कौन सा है, गति और असिद्धत्व दोनों है, तो वहाँ भी औदयिक औदयिक कॉम्बिनेशन होगा। अभी ये उपशम श्रेणी संबंधी, नीचे से तीसरी लाइन, उपशम श्रेणी संबंधी चारों गुणस्थानों में पांचों ही मूल भाव संभव है, क्योंकि यहाँ पर क्षायिक सम्यक्त्व के साथ औपशमिक चारित्र भी पाया जाता है, यानी एट अ टाइम पांच हो गए, जैसे चौथे वाले को हमने द्विसंयोगी में उसको बाद किया था, तीन संयोगी में बाद किया था, अभी तीन संयोगी वाले में भी हम ले सकते हैं, अतएव पांचों भावों के प्रत्येक संयोगी पांच भंग, अभी हमने देखा है ना, पांच चार तीन दो एक, हाँ आठों से उपशम श्रेणी हो या क्षपक श्रेणी हो, उसके जो भंग है वो उसके उसके आठवें गुणस्थान से ही गिनाए हैं, और कहीं कहीं आठवें नौवें दसवें में तो क्षौपशमिक चारित्र कहने में आता है, और जब पूर्ण होता है तो पूरा उपशम ग्यारहवें में है इसलिए वहाँ पर कहेंगे। इसलिए मैंने कहा यहाँ इस प्रकरण में तो औपशमिक चारित्र एक शायिक चारित्र लिया है आठवें से ही। अब इसके कॉम्बिनेशन देखना है हमको पांच के, एक संयोगी जो है प्रत्येक संयोगी पांच, हाँ पांच भंग, द्वि संयोगी दस, तीन संयोगी भी दस, ये दक्ष हुआ है उसको दस करना, चार संयोगी कितने हुए, चार संयोगी ये नीचे ये निकल गए ना, पांच हो जाएगी, चतुर संयोगी पांच भंग होते हैं और पांच संयोगी एक भंग होता है। अब मुझे बताओ स्वसंयोगी कितने हो गए, हाँ क्योंकि क्षायिक तो चारित्र है, क्षायिक तो सम्यक तो है, फिर मैंने उल्टा बोला क्षायिक तो सम्यक तो है, उसके साथ दूसरा क्षायिक भाव नहीं है यहाँ, और औपशमिक तो चारित्र है, उसका भी स्वसंयोगी भंग यहाँ नहीं होगा, यानी किसी को जिसको औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र है उसमें तो संभव है, द्वितीय उपशम के साथ औपशमिक चारित्र है ऐसे जीव को तो संभव है, परंतु क्षायिक का क्षायिक के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, औपशमिक का औपशमिक के साथ है सम्यक और चारित्र का, क्षायिक का वाला वो नहीं होगा, तो वो एक भंग कम होगा स्वसंयोगी में, तो स्वसंयोगी पांच के बदले यहाँ हम चार लेंगे, चार एक पांच पांच दहा बीस तीस ये पैंतीस हो जाएंगे। देखो तथा स्वसंयोगी भंग चार ही होते क्योंकि यहाँ पर क्षायिक सम्यक्त्व के साथ क्षायिक भाव का अन्य भेद संभव नहीं है, अन्य भेद यानी यहाँ चारित्र ही नहीं है या कोई अन्य क्षायिक भाव भी नहीं है, इस प्रकार सब मिलाकर 35 भंग उपशम श्रेणी के प्रत्येक गुणस्थान में होते हैं, प्रत्येक बात ली नहीं उन्होंने, क्षपक में भी प्रत्येक ऐसा शब्द लिखा था उन्होंने, इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव के केवल एक औदयिक भाव ही होता है, ये शंका चल रही है, मिथ्यादृष्टि जीव के केवल एक औदयिक भाव ही होता है और अन्य भाव नहीं होता, यह कथन घटित नहीं होता है, ये तो शंका हुई यहाँ तक, क्योंकि सूत्र दूसरे में कहा कि मिथ्यादृष्टि कौन सा भाव है तो औदयिक भाव है, उस पर शंकाकार ने पूछा ये लंबी चौड़ी लिस्ट थी कि प्रत्येक गुणस्थान में इतने इतने भाव होते हैं और आप कहते हैं कि मिथ्यादृष्टि औदयिक भाव है, अन्य भाव क्यों नहीं होते हैं, यदि आप भावों का अभाव मानेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, उसका समाधान अब दे रहे, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि मिथ्यादृष्टि के औदयिक भाव के अतिरिक्त अन्य भाव नहीं होते हैं, इस प्रकार का सूत्र में प्रतिषेध नहीं किया गया है, मिथ्यादृष्टि औदयिक भाव ऐसा कहने पर वहाँ अन्य भाव नहीं है ऐसा तो नहीं कहा, उनका निषेध तो नहीं किया है, किंतु मिथ्यात्व को छोड़कर जो अन्य गति लिंग आदि साधारण भाव है वे मिथ्यादृष्टित्व के कारण नहीं होते हैं, एक मिथ्यात्व का उदय ही मिथ्यादृष्टित्व का कारण है, यानी मिथ्यादृष्टिपना जो है उस गुणस्थान का वो क्या है, तो एक मिथ्यात्व का उदय ही मिथ्यादृष्टित्व का कारण है, इसलिए मिथ्यादृष्टि यह भाव औदयिक कहा गया है, यानी मिथ्यात्व यह भाव औदयिक है, इतनी बात यहाँ लेनी है, मिथ्यात्व को यहाँ मिथ्यादृष्टि कहा है, यानी यहाँ पे जो गति औदयिक भाव है या अन्य अन्य जो औदयिक भाव है उसका कारण ये मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व का ही कारण मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए उसको यहाँ औदयिक भाव कहा। अब कहते हैं शासादन सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है, ये ऊपर पढ़ेंगे, पहले शासन सम्मादिष्टि को भावो पारिणामी हो भावो, पहले पूछा मिथ्यादृष्टि यह कौन सा भाव है, तो औदयिक भाव है, तो शासादन ये कौन सा भाव है, तो कहते पारिणामिक भाव है। नीचे लिखा देखो, सासादन सम्यक दृष्टि कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि भाव पारिणामिक है यह बात घटित नहीं होती है, क्योंकि दूसरों से नहीं उत्पन्न होने वाले परिणाम के अस्तित्व का विरोध है। पारिणामिक तो उसी को कहते कि जो दूसरे किसी के निमित्त से नहीं उत्पन्न हुआ है, जो अपना स्वभाव भाव है उसी को पारिणामिक कहते हैं। पारिणामिक के तो हमने तीन ही भेद देखे, भव्य भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। इसलिए शंकाकार को शंका हो रही है कि यहाँ सासाधन समय दृष्टि को पारिणामिक क्यों कह रहे हो? यदि अन्य से उत्पत्ति मानी जावे तो पारिणामिक नहीं रह सकता, क्योंकि निष्कारण वस्तु के सकारणत्व का विरोध है। पारिणामिक भाव को निष्कारण कहा, निष्कारण यानी जिसमें कोई कारण नहीं है उसको निष्कारण कहते हैं। तो पारिणामिक भाव ये निष्कारण भाव है, और यदि हम यहाँ अभी उसको पारिणामिक कहते हैं तो उसको कारणपना घटित होगा, तो उसके साथ विरोध आ जाएगा। तो आप सासाधन समय दृष्टि को पारिणामिक भाव क्यों कह रहे हो, ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान, उक्त शंका का परिहार करते वह इस प्रकार, जो कर्मों के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम के बिना अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ परिणाम है वह पारिणामिक कहा जाता है। यानी पारिणामिक में किसी भी कर्म का उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम आदि कारण नहीं घटित होते, इसलिए उसको पारिणामिक कहते हैं, न कि निष्कारण भाव को पारिणामिक कहते हैं। इसकी जो परिभाषा उसने बताई थी शंकाकार ने कि जिसका कोई कारण नहीं है वो पारिणामिक, तो कहते ऐसा नहीं है। कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम या उदय जिसमें निमित्त नहीं है उसको पारिणामिक कहो। हाँ, वो शंका आने वाली है अभी। देखो, क्योंकि कारण के बिना उत्पन्न होने वाले परिणाम का अभाव है, यानी कोई भी परिणाम कारण के बिना नहीं होता। परंतु यहाँ कौन से कारण की बात है? कर्मों का उदय उपशम वगैरह आदि। शंका, सत्व प्रमेयत्व आदि भाव कारण के बिना भी उत्पन्न होने वाले पाए जाते हैं। प्रत्येक द्रव्य की जो सत्ता है उसमें जो प्रमेयत्व जो है, किसी न किसी ज्ञान के द्वारा जाने ज्ञेयत्व शक्ति जो है, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई है, तो उसको भी आप पारिणामिक मत कहो। तो उसका समाधान, नहीं, क्योंकि विशेष सत्व आदि के स्वरूप से नहीं परिणत होने वाले सत्वादि सामान्य नहीं पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? जो सत्व सामान्य ने अस्तित्व गुण, तो क्या अस्तित्व के पर्याय से रहित होगा वो? तो क्या कहते हैं, विशेष सत्व ने सत्व की पर्याय, सत्व का परिणाम विशेष सत्व, वो सामान्य सत्व के बिना नहीं पाया जाता। विशेष सत्व आदि के स्वरूप से नहीं परिणत होने वाले सत्वादि सामान्य नहीं पाए जाते हैं, यानी उनका भी विशेष सत्व ने परिणाम यानी पर्याय, सामान्य सत्व ने अस्तित्व गुण, यानी कोई भी सामान्य विशेष के बिना नहीं होता, या कोई विशेष सामान्य के बिना नहीं होता। ये तो सिद्धांत प्रवेशिका बोल रही है। कोई भी गुण पर्याय रहित नहीं होगा, और कोई भी पर्याय बिना गुण के हो गई ऐसा भी नहीं होगा। यानी सामान्य विशेष के बिना नहीं होता है और विशेष सामान्य के बिना नहीं होता है। यहाँ तो आगे सत्व लगाया, विशेष सत्व सामान्य के सत्व के बिना नहीं होगा, या विशेष सत्व उसके बिना सामान्य नहीं होगा, ये बात यहाँ बता रहे। यानी परिणाम तो वहाँ होगा ही, बिना उसका कारण क्या है? सत्व सामान्य है उसका कारण है, और सत्व विशेष वो कार्य है उसका। फिर शंका, सासाधन सम्यक दृष्टिपना भी सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों के विरोधी अनंतानुबंधी चतुष्क के उदय के बिना नहीं होता, अश्विन भाई का प्रश्न है। इसलिए इसे उदय क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि हमने देखा था उपशम सम्यक्त्व का काल चल रहा था अभी, और उस काल में ही अनंतानुबंधी का उदय आ गया, और जीव ने सम्यक्त की विराधना उसकी हो गई और वो नीचे गिर गया, सासाधन में आ गया। तो इसलिए उसको उदय कहो, ऐसा उसका कहना है। समाधान, यह कहना सत्य है, किंतु पहले तो वो उसके अनंतानंद के उदय से होता है, ये तो स्वीकार है क्योंकि वैसे तो पोजीशन है ही, किंतु उस प्रकार की यहाँ विवक्षा नहीं है। यानी यहाँ किसी की भी कर्म का उदय नहीं, ये बात यहाँ नहीं बताई जा रही, क्योंकि आदि के चार गुणस्थानों संबंधी भावों की प्ररूपणा में दर्शन मोहनी कर्म के सिवाय शेष कर्मों के उदय की विवक्षा का अभाव है। जब पहले चार गुणस्थान हम देखेंगे तो दर्शन मोहनी कर्म की क्या अवस्था हो रही है उसकी अपेक्षा वहां बातें कहेंगे। इसीलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में हमने औदयिक कहा, किसका, ये दर्शन मोहनी के उदय की अपेक्षा का औदयिक भाव वहां घटा है। आपका प्रश्न है अनंतानुबंधी कौन सा उदय है, चारित्र मोहनी का, तो उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि पहले चार गुणस्थानों में हमने दर्शन मोहनी कर्म की ही अवस्था वहाँ एप्लीकेबल है, तो यहाँ दर्शन मोहनी की कौन सी अवस्था हो रही है सासाधन गुणस्थान में, दर्शन मोहनी कर्म में क्या घटित हो रहा है अभी, कुछ नहीं। हाँ उपशम भी नहीं कहेंगे यहाँ, उपशम तो वहां था, अब यहाँ नया कार्य कुछ नहीं हो रहा है। उपशम जो होना था वो तो चौथे में हुआ था उसका उपशम, अभी उपशम तो हम उपशम नहीं कहेंगे अभी उसको, इसीलिए उसको पारिणामिक कहा है। यदि उपशम कहेंगे तो पारिणामिक नहीं माने पड़ेगा, यदि उपशम कहें तो औपशमिक भाव यहाँ घटित हो जाएगा। हाँ, पारिणामिक की डेफिनेशन में जिसका उदय उपशम क्षोपशम और क्षय कुछ नहीं पाया जाता है उसको पारिणामिक, तो यहाँ दर्शन मुनि की कोई अवस्था यहाँ नहीं पाई जाती, उसका कोई नया कार्य नहीं हो रहा है यहाँ। उपशमित है तो वो पहले हो चुका है, परंतु अभी उसके कारण अभी जीव के उपशम भाव नहीं है यहाँ, जीव का उपशमिक भाव नहीं है यहाँ। जीव का कौन सा भाव है, दर्शन मोहनी की अपेक्षा कोई भाव नहीं है उसका। देखो फिर से यहाँ कि यहाँ पहले चारों ही गुणस्थानों में भावों की प्ररूपणा में, भावों की प्ररूपणा में ये खाली अप्लाई है। ये हमने गुणस्थानों का विभाजन देखा था, तो पहले चार गुणस्थान दर्शन मोहनी की शौपशम चौपशम जो कुछ है उसकी अपेक्षा से लगाने हैं, उसके सिवाय शेष कर्मों के उदय की विवक्षा का अभाव है। इसलिए विवक्षित दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षोपशम से नहीं होता है, अतः यह सासाधन सम्यक्त्व निष्कारण है, यानी कारण रहित है। कौन सा, दर्शन मोहनीय का कोई भी कार्य यहाँ नहीं हो रहा है। उस समय दर्शन मोहनी का कुछ नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा है अभी, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व से गिर कर आया है। अभी यहाँ उपशम करने का कोई कार्य नहीं हो रहा है, अंदर पड़ा है अभी। सासाधन से मिथ्यात्व में आते ही फिर उदय चालू हो जाएगा, औदयिक भाव चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर उदय नहीं है और ना ही उसको हम उपशम कहेंगे, इसीलिए तो पारिणामिक कहा है इसको। हाँ, दूसरे गुणस्थान में कौन सा भाव है तो औदयिक हम कहेंगे, तब कहेंगे वो चारित्र का औदयिक भाव चल रहा है अनंतानुबंधी का, हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। दर्शन मोहनी का कौन सा भाव चल रहा है, तो दर्शन मोहनी की ये चारों ही अवस्थाएं नहीं है तो उसको हम कहेंगे पारिणामिक भाव चल रहा है उसका। ये पहले भी हमने गुणस्थान प्रवेशिका या विवेचन में बहुत बार याद भी किया था, दर्शन मोहनी की अपेक्षा यहाँ पारिणामिक भाव है, तब मालूम नहीं था। देखो ये अतः यह निष्कारण है। अभी फिर शंका, इस न्याय के अनुसार तो सभी भावों के पारिणामिक पने का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, यदि उक्त न्याय के अनुसार सभी भावों के पारिणामिक पने का प्रसंग आता है तो आने दो, कोई दोष नहीं है क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं आता। फिर शंका, यदि ऐसा है तो फिर अन्य भावों में पारिणामिक पने का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि संसाधन सम्यक्तों को छोड़कर विवक्षित कर्म से नहीं उत्पन्न होने वाला अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता। ये तो संसाधन में ही ये घटित होता है, अन्यत्र ये घटित नहीं होता, ये बात कहनी। अब अगले गुणस्थान की बात करेंगे। सम्माम इच्छा दिठित्ति को भावो, एक एक गुणस्थान पर कौन सा भाव ये घटित करे। तो अभी तो हमें पता चला पहले चार गुणस्थान में को भाव है ना, वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा कहेंगे। पहले गुणस्थान में औदयिक भाव है, दूसरे में पारिणामिक भाव है, अभी तीसरे की बात चलेगी। तो सम्माम इच्छा दिठित्ति को भावो खवो व समीओ भावो, एक सार्वश्रमिक भाव है कहेंगे। सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन सा भाव है? क्षावश्रमिक भाव है। अब कुछ समझाने के पहले ही शंका शुरू होती है, देखो। देखो, प्रतिबंधी कर्म के उदय होने पर भी जीव के गुण का जो अवयव ने अंश पाया जाता है वह गुणांश क्षावश्रमिक कहलाता है। ये परिभाषा हमने पहले भी सुनी थी, इसमें आता है क्या? प्रतिबंधी कर्म का उदय, यानी अभी मति ज्ञान है तो उसका प्रतिबंधी कर्म कौन है? मति ज्ञानावरण कर्म। तो उसका उदय होते हुए भी ये जो गुणांश जो है, गुण का अंश, अवयव रूप अंश पाया जाता है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ मति ज्ञान प्रकट है। ऐसा नहीं होता कि मति ज्ञानावरण का उदय मति ज्ञान को पूरा ही नष्ट करे या घात करे, उसका ऐसा कभी नहीं होता। तो उसका उदय होवे और फिर भी यहाँ जीव का कुछ ना कुछ ज्ञान का अंश, मति ज्ञान का अंश उघाड़ रूप रहे, ऐसा होता है तो उसको कहते हैं क्षावश्रमिक। क्योंकि गुणों के संपूर्ण रूप से घातने की शक्ति का अभाव क्षय कहलाता है। हाँ, यानी यदि गुणों का संपूर्ण रूप से घात करने का अभाव, घात करने को नहीं कहा, घात करने को तो औदय कहेंगे, ये पूर्ण रूप से घात करने का अभाव, उसको क्षय कहते हैं। क्षय रूप ही जो उपशम है वह क्षोभशम कहलाता है। यानी संपूर्ण घातने की शक्ति का अभाव, उसी को यहाँ क्षय कहलाया, क्षोभशम कहला। उस क्षोभशम में उत्पन्न होने वाला भाव क्षावश्रमिक कहलाता है। किंतु ये तो शंकाकार की शंका चल रही है। सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय रहते हुए सम्यक्त्व की कणिका भी अवशिष्ट नहीं रहती, उसका प्रश्न क्या है? क्षोभशम भाव, वो जो पहले आचार्यों ने समझाया था कि वहाँ प्रतिपक्षी कर्म का उदय भी होवे और यहाँ जीव का गुण भी कुछ अंश में प्रकट होवे, उसको क्षोभशम कहते हैं। अभी इसका प्रश्न ऐसा है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने पर सम्यक्त्व का कुछ अंश तो प्रकट नहीं है। देखो, सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय रहते हुए सम्यक्त्व की कणिका भी अवशिष्ट नहीं रहती, यानी वो तो सम्यक्त्व से तो च्युत ही हो गया है। अन्यथा सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघातीपना बन नहीं सकता। सम्यक मिथ्यात्व ये सर्वघाती प्रकृति है। हमने पहले घाती कर्मों के दो प्रकार देखे थे, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। प्रकृति हो, स्पर्धक नहीं। तो प्रकृति में क्या, जैसे हमने केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती प्रकृति है, क्या करती है वो? अपने प्रतिपक्ष का घात करती है, उसको सर्वघाती, पूरा ही घात। और मति ज्ञानावरण ये देशघाती है, अपना प्रतिपक्ष जो मति ज्ञान है वो पूरा घात करने में असमर्थ है, उसको देशघाती और सर्वघाती कहते हैं। अभी उसमें भी जो सर्वघाती जो है, अभी स्पर्धकों की बात यहाँ नहीं है, हम नहीं निकालेंगे उसको, जब आएगा विषय तो निकालेंगे, यहाँ तो इतना ही समझना, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक्त्व कर्म का उदय रहते हुए भी यदि सम्यक्त्व का अंश भी प्रकट रहे तो हमको उसको देशघाती कहना पड़ता, परंतु वैसा तो है ही नहीं है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व ये सर्वघाती प्रकृति है। किसका घात करती है? पूरा पूरा सम्यक्त्व का पूर्ण घात होता है, यानी उसका उदय होवे और सम्यक्त्व भी बना रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे सम्यक प्रकृति ये देशघाती है, उसका उदय होते हुए वेदक सम्यक्त्व बना रहता है, वैसे तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय होते हुए सम्यक्त्व नहीं बना रहता। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व भाव सार्वसमिक यह कहना घटित नहीं होता, ये तो शंकाकार की शंका चल रही है। उसका समाधान यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर श्रद्धान अश्रद्धानात्मक करंचित अर्थात शबलित या मिश्रित जीव परिणाम उत्पन्न होता है। करंचित कहो या शबलित कहो या मिश्रित कहो, एक ही बात है। जीव का परिणाम कैसा है? श्रद्धान अश्रद्धानात्मक, ऐसा मिश्र परिणाम है। श्रद्धान तो छूट गया, पूरा अश्रद्धा नहीं हुआ, तो श्रद्धान अश्रद्धानात्मक ऐसा परिणाम है। उसमें जो श्रद्धानांश है वह सम्यक्त्व का अवयव है, उसे सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय नष्ट नहीं करता है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व भाव क्षावशमिक है। यानी जो मिश्र परिणाम है तो श्रद्धानांश है वो सम्यक्त्व को है, उसका पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, फिर भी वहाँ अश्रद्धानांश भी है। सम्यक्त्व तो छूट गया है परंतु यह मिश्र भाव है। शंका, अश्रद्धान भाग के बिना केवल श्रद्धान भाग की ही सम्यक मिथ्यात्व यह संज्ञा नहीं है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व भाव सार्वसमिक नहीं है। यहाँ कहते हैं ये जो सम्यक्त्व का अंश जो है, श्रद्धान का अंश है, उसको तो सम्यक मिथ्यात्व परिणाम नहीं कहा है, इसलिए पूर्ण मिलकर श्रद्धान प्लस अश्रद्धान मिलकर यहाँ सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, इसलिए एक सार्वसमिक नहीं है। समाधान, उक्त प्रकार की विवक्षा होने पर, हाँ, तीसरे गुणस्थान में, हाँ, नहीं 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 मिथ्यात्व में आने पर तो औदयिक भाव हो गया, औदयिक भाव अतत्व श्रद्धान हो गया ना, मिथ्या श्रद्धान हो गया, वो औदयिक भाव है। मिथ्यात्व कर्म का दर्शन मोनी का मिथ्यात्व का उदय है, वो तो सर्वघाती है ही है। तो यहाँ सम्यक मिथ्यात्व के बारे में चर्चा चल रही है कि इसको क्षोभशम घटित नहीं हो सकता, ऐसा उसका कहना है। तो समाधान है, उक्त प्रकार की विवक्षा होने पर सम्यक मिथ्यात्व भाव क्षोभशमिक भले ही न होवे, किंतु अवयवी के निराकरण और अवयव के अनिराकरण की अपेक्षा वह क्षायोपशमिक है, उसी का अर्थ बताते। अर्थात सम्यक मिथ्यात्व के उदय रहते हुए अवयवी रूप कहाँ नहीं तो वह निराकरण रहता है, किंतु सम्यक्त गुण का अवयव रूप अंश प्रकट रहता है। यानी पूर्ण रूप से सम्यक्त तो नहीं है परंतु उसका अंश प्रकट है, इसलिए इसको क्षायोपशम भाव घटित करते हैं। इस प्रकार क्षायोपशमिक भी वह सम्यक मिथ्यात्व द्रव्य कर्म सर्वघाती ही होवे, क्योंकि ये जो सम्यक मिथ्यात्व कर्म है वो सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि जात्यंतर्भूत सम्यक मिथ्यात्व के सम्यक्त्वपने का अभाव है। सम्यक मिथ्यात्व ये जो परिणाम है उसको जात्यंतर परिणाम कहा, अन्य जाति का परिणाम जात्यंतर, ये शास्त्र में उसको दही और गुड़ मिश्रित ऐसा जो जात्यंतर परिणाम कहते हैं, तो वो सम्यक्त्व नहीं है। जैसे वो उदाहरण देते ना कि सभी शुद्ध वस्तुओं को, शुद्ध घी है, आटा है, घर का पीसा हुआ, सब अच्छी तरह से उसका सीरा बनाया और वो खाया और थोड़ी देर में वो वमन हुआ देर में, या वो ऐसे कड़वी ढकार आते ना खट्टी ऐसी, तो उसका वो जात्यंतर हो गया, उसका स्वाद बिगड़ गया है, तो ये जात्यंतर परिणाम है। सम्यक्त्व की तो विराधना हो गई है, अभी ये सम्यक्त्व नहीं है, फिर भी उसका कुछ अंश वहाँ है उसमें, इसलिए इसको सार्वसमिक भाव कहा। तो जात्यंतरभूत सम्यक मिथ्यात्व के सम्यक्त्वपने का अभाव है, किंतु श्रद्धान भाग अश्रद्धान भाग नहीं हो जाता, उसमें दोनों ही भाग है ना, श्रद्धानात्मक और अश्रद्धानात्मक। दो जो श्रद्धान अंश है वो अश्रद्धान तो नहीं हुआ है, क्योंकि श्रद्धान और अश्रद्धान इन दोनों में एकता का विरोध है। और श्रद्धान भाग कर्मोदय जनित भी नहीं है, वहां का जो श्रद्धान है वो किसी कर्म के उदय से नहीं है, क्योंकि इसमें विपरीतता का अभाव है, यानी उसमें विपरीतता नहीं होती। विपरीतता जो है वो कर्म के उदय से, या दर्शन मुनि के कर्म के उदय से जो विपरीतता है उसका भी अभाव है। और न उनमें सम्यक मिथ्यात्व संज्ञा का ही अभाव है, क्योंकि समुदायों में प्रवृत्त हुए शब्दों की उनके एक देश में भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सम्यक मिथ्यात्व सार्वभौमिक भाव है। ये श्रद्धान अश्रद्धान दोनों मिलकर ऐसा मिश्र भाव जो है उसके कारण यहाँ सार्वभौमिक भाव घटित किया है। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से ये पढ़ेंगे फिर इसको घटित करेंगे, उन्हीं की सदवस्था रूप उपशम से और सम्यक तो प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से अथवा अनुदय रूप उपशम से और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से। सम्यक मिथ्यात्व भाव होता है इसलिए सम्यक मिथ्यात्व का सार्वभौमिकपना सिद्ध होता है, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता। एक सार्वभौम भाव कैसा घटित करना चाहते कितने आचार्य, कि मिथ्यात्व जो सर्वघाती प्रकृति है उसके स्पर्धक सर्वघाती प्रकार के हैं, उनका तो उदय नहीं है, तो उसको उदय क्षय कहा, उदयाभाविक क्षय, उदय क्षय, और वो तो अंदर पड़ी है मिथ्यात्व की प्रकृति, उसका उदय नहीं है तो अंदर पड़ी है। सदवस्था रूप उपशम, बराबर। सम्यक प्रकृति में भी ऐसा ही घटित करना, सम्यक प्रकृति का भी उदय नहीं है तो उसमें देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से अथवा अनुदय रूप उपशम से। यानी यहाँ अपनी क्षोभशम की परिभाषा क्या थी, याद है किसी को? वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन देशघाती का उदय, स्पर्धकों का उदय। तो यहाँ कितने ही आचार्य ऐसा घटित करते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का तो उदय नहीं है, वो अंदर पड़ी है, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, इसलिए आप वहाँ पर क्षोभशम भाव घटित करो तो ये बात नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती वो अब बताने जा रहे। दर्शन मुनि की तीन प्रकृति है, उनमें से दो प्रकृति तो अंदर पड़ी है, उदय नहीं हो रहा है, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो रहा है, इसलिए उसको क्षोभशम भाव कहो ऐसा कहते हैं। यदि ऐसा कहेंगे तो हमको ऐसा भी कहना पड़ेगा मिथ्यात्व को भी क्षोभशम कहना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय होता है वहां भी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अंदर पड़ी रहती है और मिथ्यात्व का उदय होता रहता है। यही रूल वहां अप्लाई करोगे तो वहां पे भी क्षोभशम घटित होगा। हाँ, अनादि के लिए सम्यक मिथ्यात्व है कहाँ? देखो, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर तो आगे लिखा ना, मिथ्यात्व भाव के भी सार्वभौमिक पने का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से और सम्यक तो देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से। यहाँ तीन तीन प्रकृति है ना, इसलिए इतना लंबा चौड़ी परिभाषा हो गई। अथवा अनुदय रूप उपशम से तथा मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से मिथ्यात्व भाव की उत्पत्ति पाई जाती है। अपनी सादी भाषा में यदि सम्यक मिथ्यात्व को क्षोभशम इसलिए कहते हो कि सम्यक मिथ्यात्व का उदय है और अन्य जो दो प्रकृतियां वो अंदर पड़ी है, सदवस्था रूप उपशम कहो या उदयाभाविक क्षय कहो, जो कुछ है, तो वही रूल मिथ्यात्व के उदय होने पर भी घटित होगा। अन्य दो प्रकृति अंदर पड़ी है और मिथ्यात्व का उदय है, तो मिथ्यात्व को भी क्षव श्रमिक भाव कहना पड़ेगा। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व को क्षव श्रमिक का कारण जो अन्य प्रकार से प्रस्तुत किया है वह घटित नहीं होता है। तो कैसे घटित होता है? तो श्रद्धानांश और अश्रद्धानांश एक साथ है, इसलिए यहाँ क्षव श्रमिक भाव घटित होता है। ये बात यहाँ बताना चाहते। अब चौथे गुणस्थान की बात करनी, असंयत सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है? ऊपर रह गया असंयत सम्माद इट्ठित्ति को भावो वह समयो वा खयो वा खो समयो वा भावो। असंयत सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है? औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है और क्षायोपशमिक भाव भी है। कौन से कर्मों की बात चल रही है? दर्शनमोनी। पहले चार गुणस्थानों में दर्शनमोनी लगाना है, तो उनका यहाँ क्या क्या हो सकता है? औपशमिक भी हो सकता है, क्षायिक भी हो सकता है और क्षायोपशमिक भी हो सकता है। तो सम्यक प्रकृति के उदय से औदयिक होगा कि नहीं होगा? हाँ तो सम्यक प्रकृति वहाँ जो सम्यक्त्व है वो सम्यक प्रकृति के उदय से नहीं है, सम्यक्त्व या उदयिक भाव नहीं है, ख्याल है? सम्यक प्रकृति का उदय भी होता रहे और सम्यक्त्व भी चालू रहे ये तो हो सकता है, परंतु वहाँ जो सम्यक्त्व का अंश है क्या वो उस प्रकृति के उदय के कारण है? उस उदय के कारण तो वहाँ चलमल अगाढ़ दोष चल रहे हैं। वहाँ जो सम्यक्त्व है वो तो क्षोभशम से है, ख्याल है? उसको औदयिक भाव नहीं कह सकते हम, नहीं तो सम्यक प्रकृति का उदय है और उसके उदय जैसे मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व होता है, क्या वैसे सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक्त होता है? तो सम्यक्त्व का औदयिक भाव करना पड़े, ख्याल है? मैं क्या बताना चाहती हूँ, तो यहाँ कौन कौन से भाव है? औपशमिक, क्षायिक या क्षायोपशमिक, तीन प्रकार के सम्यक तो यहाँ पाए जाते हैं। तो उन तीन अपेक्षा से यहाँ तीन भाव बताए, जैसे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के तथा सम्यक तो प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदया भाव रूप लक्षण वाले उपशम से उपशम सम्यक तो उत्पन्न होता है। उपशम सम्यक तो यानी औपशमिक भाव जो है, किस किस का उपशम है? तीनों का ही उपशम है, दर्शन मोहिनी के तीनों प्रकृतियों का उपशम चल रहा है, बराबर है ना? यानी जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो दर्शन मोहिनी की एक मिथ्या तो प्रकृति ही, उसको उपशमित किया उसने और फिर उसके उपशम सम्यक्त के काल में उसके तीन टुकड़े हो गए, तब तीन प्रकृतियां बने। सादी मिथ्या दृष्टि होगा वो तो तीनों का ही उपशमित करेगा। तो यहाँ क्या लिखा है? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदय नहीं है, उपशम है, और सम्यक तो प्रकृति के देशघाती स्पर्धक है उनका भी उदय का अभाव है तो उसका भी उपशम है। इन्हीं तीन प्रकृतियों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव को क्षायिक कहते हैं। जो क्षायिक होता है वहाँ अनंतानुबंधी का भी क्षय है, परंतु अपनी यहाँ दर्शन मोहिनी की अपेक्षा चल रही है। सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय के साथ रहने वाला सम्यक तो परिणाम क्षायोपशमिक कहलाता है। ये बात हुई ना? उसका उदय भी चलता रहे और यहाँ सम्यक तो परिणाम भी चलता रहे, ये क्षायोपशमिक भाव है। अभी कोई कोई क्या कहते, देखो मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदया भाव रूप क्षय से, यानी उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव वही क्षय, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से तथा उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से तथा अनुदय उपशम से और सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय से क्षायोपशमिक भाव कितने ही आचार्य कहते हैं, कितने ही आचार्य क्या कहते हैं? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो उदयाभावी क्षय है और सदवस्था रूप उपशम है, और सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए यहाँ क्षय उपशम सम्यक तो घटित होता है। तो कहते यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि वैसा मानने पर अतिव्याप्ति दोष का प्रसंग आता है। यह अतिव्याप्ति दोष क्या होता है? ऐसे कोई लक्षण में जो दोष होते हैं,
जो लक्ष्य के इसमें अलावा और दूसरे में भी पाया जाता है,
जो लक्षण अलक्षण में भी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अतिव्याप्ति दोष। ये अतिव्याप्ति दोष किस में होता है? हाँ, लक्षण तो दोष से रहित होता है। तो ये जो जिन लक्षणों में ऐसा दोष पाया जाएगा उसको हम लक्षणाभास कहेंगे। मेरा सवाल नहीं आपके ख्याल में है, ये जो अतिव्याप्ति दोष है, दोष किस में है? दोष तो हम सदोष लक्षण कहेंगे तो लक्षणाभास हो जाएगा। सच्चा लक्षण इन दोषों से रहित होता है, ऐसा कहेंगे ना? तो जहाँ ऐसा दोष, लक्षण में कोई दोष होते नहीं, तो ऐसे कौन से दोषों से रहित लक्षण होने चाहिए? हाँ, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन दोषों से रहित जो लक्षण है वही सच्चा लक्षण है। तब अभी अतिव्याप्ति दोष किसको कहना? अति यानी एक्स्ट्रा, ज्यादा व्याप्त किया है, अपना जो एरिया छोड़कर और उसके बाहर चला गया, यानी जिसका लक्षण है उसमें तो है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में भी ये लक्षण पाया जाता है। तो हम इसी का वो विवक्षित का जो हम बता रहे हैं उसका स्पेसिफिक तो लक्षण नहीं होगा, अन्य में भी पाया जाता है, ख्याल है ना? जैसे गाय का लक्षण सिंह है, तो सिंह वाले अन्य भी पशु है, तो ये गाय का लक्षण सिंह ऐसा कहेंगे तो अतिव्याप्ति लक्षण दोष होता है, लक्षण है दोष। और अव्याप्ति किसे कहते हैं?
जो लक्षण एक देश में
ये पूरे लक्षणों में जो जिसका हम लक्षण बांध रहे हैं पूरे में नहीं पाया जाता, किसी उसके एक देश में पार्ट में ही है। जैसे केवल ज्ञान ये जीव का लक्षण है कहेंगे तो
नहीं,
तो अरिहंत और सिद्धों में ही सिद्ध हो लक्षण होगा, हमारे में वो केवल ज्ञान अभी नहीं है प्रकट पर्याय में, तो हम जीव नहीं ऐसा होगा, है ना? तो ये सदोष है, ये दोष है, ये लक्षण सही नहीं है, इसको कहते हैं अव्याप्ति दोष। और असंभव दोष, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ये सब असंभव दोष लगाते ना हम रोज, यानी जीव अचेतन है ऐसा कहेंगे, या शरीर जानता है। देखो ये चुभा हुआ शरीर समझ रहा है कि नहीं? ये जो हम उसका लक्षण बांध रहे हैं तो ये तो असंभव, उसमें जो है ही नहीं वो असंभव दोष। तो इन तीन दोषों से रहित ऐसा सच्चा लक्षण होता है, और जो दोष वाले जो है लक्षण उसको लक्षणाभास कहने में आता है। तो कहते हैं वैसा मानने पर अतिव्याप्ति दोष का प्रसंग आता है। तो शंकाकार पूछता है तो फिर क्षावशमिक भाव कैसे घटित होता है? तो उसका समाधान, यथास्थित अर्थ के श्रद्धान को घात करने वाली शक्ति जब सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों में क्षीण हो जाती है तब उनकी क्षय संज्ञा है। क्या कहते हैं? यथास्थित अर्थ, पदार्थ जैसे है वैसे उनकी श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं ना, उस श्रद्धा को घात करने वाली शक्ति कौन सी है? वो उसका कुछ नाम यम याद है आपको? श्रद्धान को घात करने वाली कोई शक्ति, महाशक्ति ऐसी कोई होगी ना? मोह है ना, मिथ्यात्व है। तो ये जो है वो शक्ति जब सम्यक्त्व प्रकृति के स्पर्धकों में क्षीण हो जाती है। देखो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके पास एक मिथ्यात्व प्रकृति है, जब वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, पहले तो उसने दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व को ही उपशमित किया है, उसके उदय के अयोग्य कर दिया है। अब उस अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व के काल में उसका तीन टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं? जो मिथ्यात्व में तीव्र अनुभाग था, उन परमाणुओं का अनुभाग अत्यंत मंद हो जाता है। पहले तीव्र अनुभाग था एकदम, तो उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग कम हो जाता है और कम होता है और भी मंद होता है। इतना मंद हुआ कि नहीं के बराबर। ये सम्यक प्रकृति है। तो क्या कहते हैं ये, उसका जो अनुभाग है सम्यक प्रकृति के, जो स्पर्धक है, स्पर्धक यानी अभी यहाँ अनुभाग की अपेक्षा से परमाणुओं के समूह का भी हम यहाँ स्पर्धक कहेंगे। उसमें भी वर्गणाएं वगैरह होती है, परंतु हम इसको अभी अनुभाग की अपेक्षा उसको स्पर्धक कहते हैं। उसका कितना अनुभाग है, तो उनका जो अनुभाग है वो अत्यंत मंद हो गया है, क्षीण हो गया है, पूरा नष्ट नहीं हुआ है, परंतु इतना कम हो गया है अभी वो सम्यक्त्व का घात नहीं करता है, श्रद्धान का घात नहीं करता है। या पहले बताए ना, तत्वार्थ श्रद्धान को घात करने वाली शक्ति जिसको हम मिथ्यात्व कहते हैं, वो जब सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों में क्षीण हो जाती है तब उनकी क्षय संज्ञा है, उसको क्षय कहेंगे। क्षय के प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को अर्थात प्रसन्नता को क्षोपशम कहते हैं। उसमें उत्पन्न होने से वेदक सम्यक्त्व क्षायोपशमिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्व में तीन भाव होते हैं, अन्य भाव नहीं होते हैं। अन्य भाव ने कौन से तीन भाव होते हैं, क्षायोपशमिक, क्षायिक और औपशमिक। हाँ, ये सेकंड लाइन फिर पढ़ते हैं। क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को अर्थात प्रसन्नता को, ऊपर क्या लिखा है, शंका समाधान खयानु समो प्रसन्नता खो व समो प्रसन्नता का प्रतिशु प्रसन्नतो इति पाठा खयानम उवसमो प्रसन्नता खवो समो। उपशम को ही ना प्रसन्नता कहा है। क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को अर्थात प्रसन्नता को क्षोपशम कहते हैं। क्षोपशम की परिभाषा इसमें घटित कर देना। क्षोपशम की परिभाषा अतिव्याप्ति दोष सहित नहीं है, परंतु देखो क्षोपशम की परिभाषा तो सही है, परंतु यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ जो उदय का कार्य नहीं, यहाँ जो सम्यक्त्व है वो सम्यक प्रकृति के उदय का कार्य है क्या? जैसे मति ज्ञानावरण में हम क्षोपशम घटित करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभावी क्षय और उन्हीं का मति ज्ञानावरण का और उनकी सदवस्था रूप उपशम यानी बने रहते हैं। और उदय किस रूप है, देशघाती है, जो देशघात है वो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है, ऐसी परिभाषा वहां घटित की थी। अब यहाँ तो क्या कहते हैं, देखो यहाँ तीन प्रकृतियों पर अलग अलग घटित कर रहे हैं, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति। वहाँ एक ही प्रकृति के देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक पर घटित करते हैं हम हमेशा क्षोपशम। हाँ, मिथ्यात्व के ही तीन टुकड़े हैं, परंतु उसमें से दो है वो सर्वघाती है, वो प्रकृति ही सर्वघाती है, और सम्यक प्रकृति प्रकृति देशघाती है। तो देशघाती प्रकृति में फिर वो इसके स्पर्धक भी देशघाती है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है उसमें। ये जो परिभाषा बनानी है ये यहाँ घटित नहीं होती, क्योंकि ऐसी ही घटित करनी पड़ेगी फिर मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व में। अन्य दो प्रकृतियों का उदय अभावी क्षय है और एक प्रकृति का उदय है, मिथ्यात्व में भी वही बात होती है, सम्यक मिथ्यात्व में भी वही बात होती है, और यहाँ पर भी उसी अपेक्षा से अगर इसको घटित करेंगे तो वो नहीं ठीक है। अतिव्याप्ति नहीं, जैसे अभी यहाँ पर हम क्षोपशम घटित करेंगे तो सम्यक मिथ्यात्व में भी करना पड़ेगा, और फिर मिथ्यात्व में भी करना पड़ेगा, यह अतिव्याप्ति दोष हुआ। कल इसकी चर्चा करेंगे हम फिर दोबारा। जावाणी